गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी नंद नंदन मुकुंद मुरारी नंद नंदन मुकुंद मुरारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी नंद नंदन मुकुंद मुरारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम रामा हरे 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 पुकारो हृदय से पुकारो हृदय से पुकारो हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे दया करुणा हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम रामा हरे हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे रमण राधा रमण राधे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव
श्री श्री राधा रमण देव भगवान की श्री संकेतवन धाम की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। तो आज के इस वसंत पंचमी के पवित्र दिवस पर आप सबका श्री श्री राधा रमण देव भगवान के मंदिर में स्वागत है, संगीत संकेत वन में। वसंत पंचमी बहुत सुंदर उत्सव है, पवित्र उत्सव है। और वसंत पंचमी के दिन वृंदावन धाम में होली का आरंभ होता है। आज शाम को जब ठाकुर जी का उत्थापन होगा, दोपहर को शयन करेंगे, फिर जब दोपहर से बाद शाम को जब उठेंगे 4:30 बजे 5 बजे अभी भी, तो गुलाल उधलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत रंग लगे तो भाग्य ही होगा आपका जाने के पहले। ब्रज में ये होली 45 दिन तक चलती है, आज से शुरू होती है, रोज शाम को रंग उठता है। यहाँ की होली जो है वो बरसाने में शुरुआत हुई थी उसकी, विश्व में सबसे पहले। साउंड इधर है, आप उधर हो, साउंड इज देयर, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो साउंड, लेकिन वो फिर वो रिवर्बरेट हो जाएगा, वो इट विल रिवर्बरेट इफ इट इज इंक्रीज्ड। आपको सुनाई पड़ रहा है आवाज? ये जो है ना कोना, ये इसमें आ जाइए आप, इस वाले में, इधर आ जाएंगे वो इधर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। होली जो है वो प्रेम का उत्सव है, और रंगों के माध्यम से प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रेम के अलावा इसमें और कोई उद्देश्य नहीं है। दुर्भाग्य से हम हमारे बचपन से शहरों में जो भी होली देखते आ रहे हैं वो कुछ उसका विकृत स्वरूप है, परवर्टेड एक्सप्रेशन ऑफ द रियल थिंग। तो हमको लगता है कि किसी को छेड़ना, किसी को कष्ट देना, खास करके लड़कियों को कीचड़ फेंकना, गुब्बारे फेंकना रंग के, इसी को होली कहते हैं, ऐसा लगता है। बुरा मत मानो, होली है, ऐसा कहते हैं, लेकिन बिना प्रेम के होली नहीं खेलते हैं। होली का उत्सव केवल प्रेम को प्रकट करने के लिए है। थोड़ा और कम कर देना जरा। तो शास्त्र में और यहाँ पर ऐसा रिवाज है कि जो बड़े होते हैं हमारे उम्र से, बुजुर्ग होते हैं या सीनियर होते हैं, उनके हाथों में होली लगाते हैं, ऐसे पंजे में या तो पैर में लगाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। साथ वालों को, बराबर वालों को गाल पे लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं और गले मिलते हैं, और छोटों को आशीर्वाद देते हैं गाल पे लगाकर। इतना सुंदर उसका कार्य है। उसमें कोई ऐसा वो पकड़ना, हाथ पांव बांध के उसको सब जगह पर रंग देना, बालों में डालना, खास करके वो बड़ा पसंद करते हैं बालों में डालना रंग, वो सब घिलौना स्वरूप है उसका। होली खेलने में और होली का रंग का आदान प्रदान करने में दोनों पार्टियों में से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, संकोच या पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और अधिकतर हमारा होली का उत्सव पीड़ा देने के लिए होता है, तो होली का जो उद्देश्य है वही वहां पर डिफीट हो जाता है। तो ब्रज में आकर हम सीखते हैं कि होली क्या चीज है। ये राधा और कृष्ण के बीच और राधा और कृष्ण सखा सखियों के बीच सर्वोत्तम प्रेम रंग के माध्यम से प्रकट करने का सर्वोत्तम तरीका है। जैसे फूल भी एक माध्यम है, वो फूल भी देकर हम प्रेम व्यक्त करते हैं, फूलों की पंखुड़ियां देकर प्रेम व्यक्त करते हैं, वैसे ही रंगों के माध्यम से प्रेम अर्पण करते हैं। और नई नई बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। रंग के कुछ ऐसे पौधे मिलते हैं, मतलब बेलियाँ होती हैं, वाइन्स एंड क्रीपर्स, उसको ये खास करके होली के मौसम में मिलते हैं बाजार में, बनिया के पास, किराना दुकान के पास। उसको उबालते हैं, फिर उसमें से कलर्ड वाटर निकलता है रंगी बिरंगी, और उसको गुनगुना स्वरूप में ही पिचकारी में डालते हैं। और जब वो पिचकारी चलाते हैं ना, तो हमारी स्किन जो है वो खुल जाती है पूरी, खुल और खिल भी जाती है, इट बिकम्स वेरी ब्राइट। अभी जैसा है वैसे वो गुनगुने पानी के उस वनस्पति के स्पर्श से आपका चेहरा, आपकी जितनी भी त्वचा है वो खिल जाएगी पूरी, ये उसका पर्पज है। और जो क्लासिकल होली जो जानते हैं वो सब यही लेके आते हैं, उसको बनाते हैं राधा वल्लभ जी के मंदिर में और पुरातन मंदिरों में, वैसे होली खेलते हैं गुनगुने पानी की। उसमें कोई केमिकल ऑयल पेंट वगैरह नहीं होता है, इसमें पूरे स्किन का नुकसान हो जाता है, बालों का नुकसान हो जाता है। हर हमारा जो उत्सव है ना, वो हमारे क्या कहते हैं उसको, फिजिकल लाइफ को भी बढ़ाने वाला है, स्पिरिचुअल लाइफ को तो बढ़ाने वाला है, वो तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए है, लेकिन मन शरीर इंद्रिय इनको भी उत्तेजित करने वाला है, काम वासना के लिए नहीं, प्रेम के लिए उद्दीपित करता है, एनलाइवन्स इट, इनविगरेट्स, प्रोत्साहित करता है वो। हर एक हमारा उत्सव आत्मा को प्रफुल्लता प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए वो उत्सव होते हैं। आत्मा को दुखी करने के लिए, कष्ट करने के लिए, किसी का बदला लेने के लिए, किसी का वैर निकालने के लिए नहीं होता है। तो इसलिए हम आनंद ले सकते हैं, लेकिन हर आनंद के बीच में जिसको लगा रहे हैं रंग या जिसके साथ खेल रहे हैं, उनको पहले आनंद मिलना चाहिए, फिर उनके आनंद में मुझे आनंद मिलना चाहिए, उनको दुख देकर मुझे आनंद नहीं मिलना चाहिए। अधिकतर भौतिक दुनिया का नियम कैसे होता है, आपको कष्ट मिले या सुख, आप कुचल जाएं या जिंदा रहें, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, यह भौतिक दुनिया का नियम है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में केवल दूसरों को आनंद देने की प्रक्रिया को ही उत्सव कहते हैं, और दूसरों को आनंद जब मिलता है तो अपने आप खुद को आनंद प्राप्त होता है। ये सारे उत्सवों का नींव यही है, देना, गिफ्ट देना, आनंद देना, खुशी देना, संतुष्टि देना, और उसके बदले में वो चीज़ वापस अपने आप प्राप्त हो जाती है। इट इज़ इन गिविंग वी रिसीव, जब हम किसी को देते हैं कुछ तो प्राप्त हो जाता है, चाहे सम्मान हो, चाहे प्रेम हो, जो भी कुछ हो, वो प्रेम और सम्मान और बहुत सारी चीज़ें हैं, दुख भी है, दुख दिया तो दुख मिल जाता है वापस। तो ये उत्सवों का जो रहस्य है भारत का, भारत उत्सव प्रिय देश है। भारत में पहले जमाने में कभी डिप्रेशन नहीं होता था, क्यों बताइए? अरे एक के बाद एक फेस्टिवल है, कृष्ण के हैं, देवी देवताओं के हैं, लगातार लगे रहते हैं। देखो आप, अभी शुरू हो गया अभी वसंत पंचमी का, अभी देखो यहाँ पर तो 40 दिन रोज होली खेलेंगे लोग, इतना आनंद उठाते हैं, सब मंदिर लाल लाल रहते हैं, जमीन भी लाल होती है, सब दीवार भी लाल होती है, फिर रंगीली होली है, फिर धुलेटी है, फिर हमारे इस संप्रदाय में गौर पूर्णिमा है, उस संप्रदाय में वो है, संप्रदाय में ये है, संप्रदाय में वो है, लगातार उत्सव चलते रहते हैं। तो लोगों को बीच में ना डिप्रेस होने के लिए समय नहीं रहता है, देयर इज नो टाइम टू गेट डिप्रेस्ड। यही भारतवर्ष की खूबी है, जहां पर उत्सव नहीं है वहीं पर पहले ये लोनलीनेस और डिप्रेशन शुरू हुआ। पश्चिम जगत में जाएंगे तो साल में एक ही फेस्टिवल होता है, क्रिसमस, देयर इज नो अदर फेस्टिवल, कुछ है ही नहीं। और गल्फ में जाओगे तो दो फेस्टिवल हैं, एक बकरीद और एक रमज़ान ईद, वो 3 दिन की और 3 दिन की, उसके बाद में कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे आओ, आपको कौन से मन में कौन से दिन में उत्सव चाहिए हर प्रकार के फेस्टिवल उपलब्ध है यहाँ पर, और कितनी विविधता है उसके अंदर, कभी रंगों के हैं, कभी फूलों के हैं, कभी जन्माष्टमी, कभी राधाष्टमी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी गणपति है, कभी नवरात्रि है, दशहरा है, एक एक दिन के ऊपर कई कई रहस्य छुपे हुए हैं। जैसे आप दिवाली, जो दिवाली का ऊपर बैठोगे ना, तो एक एक दिन के, एक एक दिन दिवाली के अंदर कई प्रकार के संदर्भ है उसके अंदर, रेफरेंसेस अदर। जैसे दिवाली के अंदर प्रभु रामचंद्र भी अयोध्या में लौट के आए, इसलिए दीपदान शब्द करते हैं। दिवाली के दिन यशोदा माई ने कृष्ण भगवान को उखल से बांधा था। कितने हैं चीज़ें, नरकासुर को वध किया था चतुर्दशी के दिन, बलि प्रतिपदा, बलि महाराज को ऊपर आने के लिए बंद दिया था उधर परमिशन उस दिन, लक्ष्मी पूजा, उस दिन लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, गोवर्धन की पूजा भी करते हैं, भैया दूज के दिन भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं। केवल भैया दूज में दिन यमुना जी में भाई का हाथ पकड़ के जब बहन स्नान करती है और भाई केवल बहन के हाथ का भोजन करता है तो उसी से वो बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे कितने सारे उत्सव एक ही चीज़ में जमे हुए हैं। जैसे कार्तिक पूर्णिमा के तुलसी की पूजा करते हैं, उसी दिन कृष्ण का भी गर्भ धारणा हो गई थी। कितनी सारी चीजें हैं उसके अंदर, एक एक चीज दिन के अंदर। आज वसंत पंचमी है, 4 संतों का जन्मदिन है आज, होली का उत्सव है। इसलिए भारतवर्ष इज द बेस्ट ऑफ ऑल, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इंडिया इज द बेस्ट। हमें गर्व करना चाहिए इस बात पर। हम सब लोग रहते इंडिया में हैं, अपना एंटीना उधर लगा के रखा है उस तरफ, सबका ध्यान उधर है। देखो आप सबके कपड़े देखो, सबके हेयर स्टाइल देखो, सब बोलने का तरीका देखो, स्टाइल देखो, सब उनका है, उदार का। लेकिन हमारे संस्कृति में जो ताकत है, जो नींव है, फाउंडेशन है, वो किसी भी संस्कृति में नहीं है। बाकी सब जगह पर मिट्टी, क्या कहते हैं ना, माती मोल, मतलब बोलते हैं ऐसे ना कि मिट्टी के मोल बिक गया हो, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है। केवल यही देश ऐसा है जिसके मिट्टी को वैल्यू है। बड़े गर्व की बात है हमें, जितनी बार विदेश हम गए हैं उतनी बार यही अनुभूति लेकर आए हैं कि भारत ही सबसे बेस्ट है। यहाँ पर जो सुकून है, यहाँ पर जो फ्रीडम है अपने आप को व्यक्त करने का, यहाँ पर जो परिपूर्णता है, कम्प्लीटनेस, तो किधर भी नहीं है। इसलिए कहीं भी जाओ, रहो भारत में क्योंकि इस भूमि में प्रभु राम, प्रभु सब, प्रभु के जितने अवतार हैं, प्रभु स्वयं उनके चरण कमल लगे हैं, जितने भी करोड़ों संत हैं सभी यहीं पर आए हैं, उनके चरण कमल भी यहीं लगे हुए हैं। लीला नाम की जो चीज़ है ना, लीला, वो लीला भी सब यहीं होती है जी। वो रामचरित कहाँ गए, देखो जरा आवाज को ध्यान रखना। तो लीला नाम की चीज़ है, मतलब लीला केवल भारत में हुई है, बाकी सब लीला वगैरह नहीं होती है, वो घटनाएं होती है, अधिकतर दुर्घटनाएं होती है यही एक देश है ऐसा जो हमें उत्साह दिलाता है। मैंने एक पिछले वाले बैच में भारत की एक अनोखी व्याख्या बताई थी जो मैंने सुनी थी, आप सुनना चाहेंगे? भारत का अर्थ है भा यानी राधा कृष्ण का प्रेम। सब लोग सुन रहे हैं इसको, भा यानी राधा कृष्ण का प्रेम, और इसमें जो रथ रहते हैं वो देश भारत देश है। और भारत देश की और एक व्याख्या है, जहां पर गायें निर्भय होकर विहार करती हैं, उन्हें मृत्यु का डर नहीं होता है या हिंसा का डर नहीं होता है, तो निर्भय होकर विचरण करती है, वो भारत देश है, उसी को ब्रज कहते हैं। तो आइए इस वसंत पंचमी के उत्सव पर आप सबको हम शुभकामना देते हैं कि आपका भारत भूमि पर, भारत के रज पर प्रेम बढ़े। सब जगह घूम के आइए आप, लेकिन दिल भारत में रखिए, दिल किसी को देखे मत आइए, इंग्लैंड में, अमेरिका में। हाँ, कई ऐसे लोग हैं जन्म से ही देखते हैं कि मुझे विदेश जाना है बस। मैं बच्चों को भी जानता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को, उनको बड़े होकर भी देखते, बड़े होकर बाद पिताजी को कहते हैं कि मुझे पति भी अमेरिका का ही चाहिए, वहीं रहना है। यहां पर क्या है, ये हमारा एक दुर्भाग्य है। जैसे हम ब्रज में आते हैं तो हमको लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी ब्रज में कहाँ रखो है, अब बम्बई ले चलो, बम्बई ले चलो, ऐसे हमको बोलते रहते हैं। इधर क्या है, कुछ है ही नहीं यहाँ। हम उनको कहते हैं अरे हम वहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हमारे पास नहीं वो देखने के लिए, वो कह रहे हैं अरे यहाँ पे कहाँ है। तो मुंबई के लोग कहते हैं कि मुंबई में क्या है, तो न्यूयॉर्क जाना चाहिए, लंदन जाना चाहिए। और वहां पर क्या है, वहां पर पानी भी टॉयलेट का हो या किसी भी चीज का हो, उसको रिसाइकल करके आपको वापस पिलाते हैं। वो देश को प्रगत देश कहते हैं, एडवांस कंट्री वेयर ऑल काइंड्स ऑफ वाटर्स आर रिसाइकल्ड फॉर यू टू ड्रिंक। भारत ऐसा ही एक देश है जहाँ लोग फ्रेश पानी पीते हैं, क्योंकि वर्षा इतनी होती है यहाँ पर, कोई समुद्र का पानी उसको उल्टा सुल्टा करके घुमा के करके पीने लायक करने की कोई जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड ऑफ डिसैलिनेशन प्लांट इन इंडिया, ना प्रचुर मात्रा में पानी है। विदेश में सब जगह आप जाएंगे ना तो वहाँ पर अधिकतर देशों में तो वर्षा नहीं होती है और धान नहीं आता है, सब्जी नहीं आती है। भारत जो है ना प्रदेश, बांग्लादेश, श्रीलंका जो ये इलाका है, यहीं से पूरे विश्व को सब्जियां जाती है, मसाले जाते हैं, फल फूल जाते हैं। शास्त्र में लिखा है कि अगर भारत में गाय की अगर पूरी तरह देखभाल अच्छी तरह की जाएगी ना तो भारतवर्ष पूरे विश्व को भोजन करा सकता है। इंडिया कैन फीड द होल वर्ल्ड सफिशियंटली, नॉट इन द मेजरमेंट, सफिशियंटली। प्रॉब्लम केवल एक है, भारतवासियों को भारत पर श्रद्धा नहीं है, भारत पर प्रेम और श्रद्धा और विश्वास नहीं है कि भारत में ये सब कुछ है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो मैं सऊदी में रह गया बहुत दिन से, बीच में गया था, अरे ना सऊदी आना फिर सऊदी, ऐसा इतना उनको इतना सा देश है वो चिंटू, हाँ इतना, लेकिन उस पर लोगों को जिस पर गर्व है सब देश को, आना फिर हिंदी, आना फिर वल्लाह हिंदी, सब ऐसे घटिया मानते हैं सब लोग, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि ये देश के लोग जो हैं वो पूरे विदेश में जाकर नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं पैसे के लिए केवल। और कुछ लोग समझते हैं कि ओ दैट कंट्री, कंट्री ऑफ बेगर्स, वो भिखारियों का देश। अशोक के समय तक, राजा अशोक के समय तक भारतवर्ष विश्व के सभी देशों को लोन दिया करता था। आप सोच सकते हैं बात को, Everybody taking loan from India। लेकिन जब भारतवर्ष के लोगों ने भारतवर्ष के ऊपर श्रद्धा जब गंवाई तब जाकर भारत देश भिखारी देश बना। इसलिए हम लोग ही इसके लिए कारण हैं, और आज भी अगर कुछ हो रहा है तो हम ही उसके कारण है, क्योंकि हमको ही, हमारे ऊपर श्रद्धा नहीं है, हमारे अस्तित्व पर हमको श्रद्धा नहीं है, हमारे भारतीय होने पर हमको गर्व नहीं है, हमारे संस्कृति पर हमको गर्व नहीं है। हमको खाली हैप्पी बर्थडे को हम केक काटते हैं, हम लोग केक काटना बंद कर दिया है, हम लोग खाली लड्डू देते हैं, घर में बनाया हुआ घी का बढ़िया लड्डू सबको देते हैं बर्थडे बॉय के हाथ से, उसको माला पहनाते हैं और उसको घी के दिए से आरती उतारते हैं, उसकी सुपारी गोल्ड रिंग और बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, उससे वो बर्थडे बेबी की आरती उतारते हैं और उसके हाथ से प्रसादी लड्डू सबको बांटते हैं और कीर्तन करके नाचते हैं। हम लोग हरे कृष्णा भी उसी टून में गाते हैं, है ना, हरे कृष्णा टू यू, मतलब क्या, सारा चीज बोरोड है हमारा, एवरीथिंग इज उधार, अपना कुछ है ही नहीं उसके अंदर। आप सोच लीजिए इस बात पर, विचार कीजिए, अच्छा दिन है आज ये बसंत पंचमी का, भारतीयता के विषय में प्रफुल्लित होने के लिए अच्छा दिन है। उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, बौद्धिक गुलामगिरी कहते हैं उसको, बुद्धि से ही हम गुलाम हैं, शरीर से तो बाद में बनते हैं ना, बुद्धि से ही अपने आप को गुलाम समझते हैं, उस संस्कृति के गुलाम हैं हम, उस विचारधारा के गुलाम हैं, वी आर द स्लेव्स ऑफ दैट थॉट प्रोसेस विच कम्स फ्रॉम वेस्ट। हमको यहाँ से डिक्टेट करना चाहिए कौन सी फैशन करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, हमें गर्व है हमारे धोती और कुर्ता पर, क्योंकि हमारा वेश है ये, बोरोड वेश नहीं है, इसे गर्व से पहनना चाहिए, शर्मिंदा होना नहीं। ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, फ्लाइट में जाओ, टेल देम वी आर इंडियंस एंड वी बिलीव इन इंडियन कल्चर एंड वी स्प्रेड द इंडियन कल्चर। खाली हरिबोल मत बोलना, करना उसको, हरिबोल करने में मजा आता है बहुत। जय हो, वाह क्या बात है, माशाल्लाह। थोड़ा ना जरूरी है ये सब, ये क्योंकि हम नष्ट हो रहे हैं, हमारे संस्कृति नष्ट हो रही है, सब कुछ नष्ट हो रहा है जिस पर हमको गर्व करना चाहिए। और हम ही लोग अगर नहीं बचाएंगे, जो शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, भजन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? नास्तिक बचाएगा? और कोई धर्म के लोग बचाएंगे? हमको बचाना है उसको। धर्मो रक्षसि रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है वो उसकी रक्षा अपने आप हो जाती है। जो धर्म पर श्रद्धा नहीं है वो मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है, जीवत शव समान। तुमको जिंदा होकर जीना है, मुर्दा होकर जीना नहीं है। भगवान के विषय पर, भगवान की भूमि पर, भगवान के रज पर, भगवान के चरणों पर श्रद्धा रखता है वही, उसी को जीवन कहते हैं। रेस्ट ऑल इज डेड लाइफ। तुमको जीवन जीवन प्राप्त करके मृत जीवन नहीं जीना है। यू वॉन्ट टू लिव लाइक अ लाइव एनलाइवेंट पर्सन। तो सबको विनती है, ब्रज में आए हो, मैंने ये इस बात पर बहुत चिंतन किया है कि मैं कई बार यहाँ पर होली पे आया हूँ और ऐसे क्या कहें उसको, गरीब बेचारे, अनपढ़, कुरूप दिखने में, काले कलूटे, ऐसे एकदम गंवार दिखने वाले, कपड़े भी जिनके बहुत सिंपल है, ऐसे आके जब गाना शुरू करते ना तो आपके आंसू में आंखों से आंसू निकल आएंगे। इतना प्रेम से गाते हैं राधा रानी के, होली के रसिया भजन, जन्माष्टमी राधाष्टमी के जन्म की बधाइयाँ, इतने सुंदर गाते हैं। तब मुझे विश्वास हुआ कि ये जो भाव है ना, ये ब्रिटिश और मुसलमान लोग भी निपटा नहीं सके इसको, क्योंकि इतना गहराई में घुसा हुआ ये। हाँ, आप उनको आप चाय पिला सकते हो, उनको आप और कुछ चड्डी पहना सकते हो उनकी, जो भी कुछ है, लेकिन हृदय के अंदर जो भाव है ना, इसको नष्ट नहीं कर पाए। इसलिए विदेशों में कई जगह परकी आक्रमण हुए और वो देश का धर्म ही बदल गया। आज वो कोई दूसरा ही धर्म है। ये तुर्कस्तान, पर्शिया, ये सब तो फारसी देश थे, वो आज मुस्लिम देश हो गए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, वो मुस्लिम देश हो गए हैं। जहाँ जहाँ आक्रमण हुआ वो देश का धर्म ही बदल गया, उसका राष्ट्रीय धर्म बदल गया पूरा। लेकिन भारत पर 1000 वर्ष मुगलों ने राज्य किया, 200 साल ब्रिटिशों ने राज्य किया, लेकिन भारत की धार्मिकता नहीं बदली। चलो वो सेक्युलर हो गया, मतलब क्या कहते हैं उसको, एवरीबडी सेम ऐसा हो गया, लेकिन वो एक पर्टिकुलर आक्रमण किए हुए लोगों का धर्म नहीं बना। क्योंकि यहाँ पर जो रज के अंदर जो धर्म है, जो हृदय के अंदर जो धर्म है, उसको वो मिटा नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग अगर सो जाएंगे ना अभी अमेरिकन टीवी देखकर, तो एक दिन होगा वो। हाँ, डोंट बी टू प्राउड एंड टू कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। 1000 वर्ष में जो कुछ नहीं नुकसान हुआ, 200 ब्रिटिशों के वर्ष में जो नुकसान नहीं हुआ, वो 10-25 साल में अमेरिकन टीवी देख के नुकसान हुआ है इंडिया का। सॉरी टू से, वो रेल ट्रैक पर क्या कहते हैं, प्रातर्विधि करने को बैठेगा सुबह, लेकिन वहाँ उसके हाथ में 10,000 का मोबाइल होगा उस समय, जब वो रेल ट्रैक पर बैठकर अपना मॉर्निंग विधि कर रहा है। ये हमारे देश की अधोगति है, दिस इज द डिग्रेडेशन ऑफ आवर कंट्री। पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन उनको वो अमेरिकन उसमें जब सब कुछ डेटा वेटा वाला चाहिए सब उनको, और वो देखकर गांव-गांव में भी लोग वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे करते हैं, वैसे चलते हैं। ब्रज में अभी शादियों में इतने सुंदर सुंदर गीत हमने सुने हैं, पहले 25 साल पहले ब्रज में शादी में न्योता मिलना ये गर्व की बात हुआ करती थी कि मुझे भी उसमें निमंत्रण है। इसमें शादी के घर में 25 प्रकार के स्वीट्स बना जाते थे, वो भी 100 के 25 हो गए होंगे, लेकिन 25 वाले घर में मैं गया हूँ जिसमें 25 घी की मिठाइयाँ घर में बनी हुई है शादी के घर में, और वो 10 दिन से उनका उत्सव चलता है। मैं शादी में गया, उसमें बारात में भी ठाकुर जी के गीत गाते हैं, और जब मालाएँ जय माला हो रही तभी गीत गाते हैं, सिंदूरदान में ठाकुर जी के गीत गाते हैं, जैसे ठाकुर जी ने राधा रानी को सिंदूर चलाया था, उस बहुत सारे गीत हर एक विधि में गाते हैं। अभी सब जगह बेंजो बजता है, एकदम कर्कश म्यूजिक से सब लोग ऐसे ऐसे गंदे नाच करते हैं, दिस इज लाइक एंजॉयमेंट। इतना डिग्रेडेशन हो गया है, क्योंकि वो संस्कृति का प्रभाव है, गांव-गांव तक टीवी के माध्यम से पहुंच गए हैं। खाने को अन्न नहीं, कपड़े को पहनने को कपड़ा नहीं, लेकिन डिश एंटीना लगा हुआ है, वो चाहिए, मरेंगे लेकिन टीवी देख के मरेंगे, ये हमारी संस्कृति हो गई है। तो हमें को बचाना है उसको। अगर मैं अगर जीन पैंट्स और टी शर्ट पहन के यहाँ बैठूंगा और वही कथा करूंगा जो कल से कर रहा हूँ, तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा। लेकिन मैं सांस्कृतिक वस्त्र पहनकर यहाँ बैठूंगा अच्छी तरह से तिलक लगाकर, तो आपको भी लगेगा कुछ आध्यात्मिक सुन रहे हैं। यू विल ऑल्सो फील समथिंग स्पिरिचुअल इज गोइंग ऑन। आइए आज वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर अपने आप को पहचाने हम लोग, हू आर वी, एंड वी शुड मेंटेन दिस कल्चर विद ग्रेट प्राइड इन द हार्ट। और हम सब पर प्रेम करते हैं, किसी का भेदभाव नहीं करते हैं और सबको प्रेम देना चाहते हैं हम। ये मुसलमान क्रिश्चियन ये वो सब भेदभाव कभी भी नहीं करते हैं। हमारे को ये शिक्षा ही नहीं मिली कभी, हम सबको अपना कर गले लगा कर चलते हैं। लेकिन अपनापन बेचकर नहीं करते सब, ये अपनापन जो बचा कर करते हैं। वी वॉन्ट टू मेंटेन आवर सेल्फ एज वी आर एंड देन वी गिव लव एंड वी वेलकम एवरीबडी हूएवर वांट्स टू कम। क्योंकि हमारे पास हमारे भगवान की कृपा से संतों की कृपा से ऐसा धन है जो हम देना चाहते हैं लोगों को, उसका परिचय कराना चाहते हैं। तो इसलिए गर्व से जीना चाहिए और किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी का ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। डोंट बी लिटिल एनीबडी कि ये ऐसे है वो ऐसे है, लेकिन सबको प्रेम देते हुए अपने आप का जो गौरव है, जो ग्रेटनेस है हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति का, भारतीयता का जो गौरव है, उसको बनाए रखकर करना चाहिए। मेंटेन दैट इन योर हार्ट एंड लिव ग्रेटफुली एंड ग्रेसफुली एंड फ्रेंडली। हरे कृष्णा। देखो कितना सुंदर जगह है ये। संकेत, संकेत यानी क्या? इशारा, सिग्नल। तो ये संकेत वन है, यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण संकेत करके मिलते हैं एक दूसरे को। आप राधा रानी का मंदिर गए ना ऊपर ऊपर पीछे जाएंगे ना मंदिर के, गोल घूम के कभी गए? उधर पीछे राधा रानी के चरण चिन्ह हैं, वहाँ पर राधा रानी खड़ी होकर वहाँ से नंदगांव दिखाई पड़ता है। अगर धुंध वुंध नहीं होगी, मौसम साफ होगा, तो आपको सीधे नंद भवन का दर्शन होगा। तो वहाँ पर कृष्ण, यहाँ पर राधा रानी, हस वो मुद्राएं होती ना बहुत सारी, सब समझ जाते हैं उसके अंदर। तो ये मिलने का स्थल है, संकेत देकर यहाँ मिलते हैं। राधा रमन जी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर संकेत देवी का मंदिर है, दिखाएंगे आपको। तो संकेत देवी वो दुर्गा देवी का एक स्वरूप है और वो राधा कृष्ण के मिलन में वो बहुत सहायता करती है संकेत के रूप में। संकेत नाम ही संकेत देवी है, तो इनके मिलने के लिए, छुप छुप के मिलने के लिए बहुत सहायता करती है। कल हमारी एक कहानी थी जो उधर एक पॉइंट पर रुक गई थी। कहाँ रुक गई थी? कि राधा रानी ने रत्न बनवाए मोती से, है ना। उसके बाद में जैसे ये पार्टी ने भी हाँ कर दी, वो पार्टी भी खुश है, दोनों ने आदान प्रदान कर दिए अपने गिफ्ट के, तो ब्रज में यहाँ बरसाने नंदगांव में ऐसा माहौल पैदा हो गया कि अभी तुरंत राधा कृष्ण का विवाह कर देना चाहिए। तो सब लोग भाग के पूर्णमासी के पास गए और पूर्णमासी के पास गए। पूर्णमासी कौन है? सांदीपनी मुनि की माता है। और कौन है वो? योग माया। वो दुर्गा देवी की अवतार है, राधा कृष्ण की लीला में अपना कंट्रीब्यूशन है, उनका रोल है उसका। तो वो गोपियों के गुरु भी है, यशोदा कीर्तिदा ये सब बड़ी गोपियों की गुरु भी है वो। तो जो भी कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है, कुछ समस्या होती है, कृष्ण रो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो भी उसको बुलाते हैं क्या करें या और कुछ करना है इम्पोर्टेंट काम। तो पूर्णमासी के पास गए वो मुहूर्त निकालने के लिए, इनका विवाह करना चाहिए, दोनों पार्टी अभी अनुकूल है। तो पूर्णमासी ने इनका विवाह रोक लिया। आप बोले क्यों, इतना अच्छी घटना हो रही है? तो उसमें समझने वाली बात यह है कि एक दो प्रकार के भाव होते हैं, एक होता है परकीय भाव, एक होता है स्वकीय भाव। हाँ, स्वकीय भाव नहीं क्या, रुक्मिणी ने भगवान से शादी कर ली, सत्यभामा ने कर ली, विदाई हुई, भगवान के घर में प्रवेश किया, उनके घर में रहने लगे, तो देयर इज नथिंग अनऑफिशियल अबाउट इट, डू थिंक इज ऑफिशियल। मंगलसूत्र पहना हुआ है, सिंदूर ले लिया है, उनके घर में अभी कोई छुप छुप के मिलने की जरूरत है क्या? एकदम ओपन है सब कुछ। उसको स्वकीय कहते हैं, भगवान की सारी पत्नियां स्वकीय भाव में, क्योंकि वो अपनी शादीशुदा करके पिताजी की सम्मति, सबके समाज के सम्मति से, सबका आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान के घर चली गई हैं, उनकी घर गृहस्थी चला रही हैं। परकीय मतलब क्या? वो परकीय उसके परे का प्रेम है, तो राधा रानी और गोपियाँ करती हैं। बिना विवाह के, बिना किसी के, बिना किसी भी, वो उनका प्रेम जो है वो स्वकीय वाली रानियां भी नहीं कर सकती हैं। वो परकीय भाव जो है ना, वो दुनिया में बहुत घिलौना माना गया है। सपोज अभी कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी दूसरे औरत से प्रेम करता है तो हमारे लिए सबसे घिलौनी बात है वो, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे टॉप पर जो चीज़ है वो जब यहाँ करते हैं दैट इज द मोस्ट डिग्रेडेड थिंग, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो मटेरियल वर्ल्ड है। उसमें सबसे ऊंची चीज़ होती है वो सबसे नीची चीज़ होती है। द हाइएस्ट थिंग ओवर देयर बिकम्स द लोएस्ट थिंग ओवर हियर एज अ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम प्रयास करेंगे हम भी परिक्रमा में जाएंगे, सब लोग पसंद करेंगे, जब लोग परिक्रमा में जाए तो इतना अच्छा है, एक एक साथ सौ सौ पुरुष और स्त्री के साथ अपना रिलेशन हो सकता है। बट वो सबसे यहाँ पर पाप कर्म माना गया, इलिसिट व्यभिचार माना गया, उसका बहुत जघन्य परिणाम लिखा गया है अगर हम लोग यहाँ पर कुछ करते हैं उसी विचार से। पुराने जमाने में तो मन में भी व्यभिचार करेंगे तो भी उसका दंड होता था। जैसे एक क्षण के लिए जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने गंधर्व के लिए, एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया कि आ कितना सुंदर है ये, एक क्षण के लिए जब जल भरने गई थी तो उसके पति जमदग्नि बड़े क्या कहते हैं त्रिकालज्ञ थे वो, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान था उसे। तो जब ये लौट के आई तो तुरंत पता चला कि इसका मन भ्रष्ट हो गया है, तो उसने थोड़ा वध कर दिया उसका पूरा। तो फिर परशुराम जी आए, उन्होंने पिताजी को बहुत सेवा किया और पिताजी ने कहा कि वर मांगो पुत्र, वर मांगो। तो उन्होंने कहा माता को जीवित करो, तो माता को जीवित कर दिया। तात्पर्य क्या है इसका कि पुराने युगों में मन के अपराध भी गिने जाते थे, और अगर मन के अपराध आज गिने जाएंगे तो जाने कहाँ होंगे कहाँ होंगे हम। हमारा मन तो दिन भर विषयों का चिंतन करते रहता है, एवरीथिंग इलिसिट माइंड इज कंटेम्पलेटिंग। हाथ में माला और मन में कुछ लड्डू फूट रहे हैं अलग अलग प्रकार के। तो कलयुग में भगवान ने दया से कलयुग की स्थिति को देखते हुए मन के अपराधों को पहले से क्षमा कर दिया है, ये हमारा भाग्य है। लेकिन मन के द्वारा जो हम पुण्य कार्य करते हैं ना उसको भगवान फल देते हैं। समझो आप बहुत गरीब हो, कोई गरीब नहीं यहाँ पर इतना, लेकिन बता रहा हूँ सब धनी है जो बरसाने में आते हैं। एनीवेज तो जो समझो बहुत गरीब है आप, और आपके पास लगता है आपको कि आपको सोने की कटोरी में भगवान को 56 भोग रोज अर्पण करना चाहिए, ऐसा आपके मन में इच्छा है लेकिन आप कर नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप मन में सोने की थालियाँ परोसेंगे, उसमें अगर 56 भोग बनाकर परोसेंगे तो भगवान आपके सोने की थाली में 56 भोग स्वीकारेंगे और वही लाभ आपको देंगे। जैसे वसुदेव का जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वो जेल में थे, सब कुछ होने पर भी वो जेल में थे, कुछ नहीं था उनके पास, तो उन्होंने मन में 2 लाख अलंकार से सजी हुई गायों को दान किया। आज भी अगर आप समझो आपके एक्स अमाउंट ऑफ वेल्थ है आपके पास सोने की थालियां नहीं है समझो, तो आज भी आप अपने घर में बैठकर चिंतन करके, मन में ही चिंतन करते हुए मग्न होकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो कोई भी आदमी कह सकता नहीं मैं गरीब हूं, तो गरीब हो तो क्या हुआ, मन तो आपका अमीर हो सकता है ना। मन की गरीबी अमीरी तो हम लोग मेहनत से नहीं कमाते हैं, वो तो अपनी इच्छा के ऊपर है। तो जो ऊंची चीज है, सबसे उच्च चीज है, वो यहां पर सबसे घटिया और घिलौनी चीज है। लेकिन वो जो है वो सर्वोच्च रस है, वो यहाँ के एरिया का, ब्रज का जो बरसाना नंदगांव यावट हम जाएंगे आज, वहां का जो ये तीन तीन जो इलाके हैं, यहाँ का स्थायी भाव यानी मेन कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ऑफ दिस प्लेस इज परकिया। छुप छुप के मिलना, इशारे करना, कभी कोयल बन के मिलना, कभी तोता बन के मिलना, कभी इस तरह से मिलना, कभी इस तरह से मिलना, कभी भाग जाना, कभी मिल रहे तो तुरंत, कोई पकड़ने आया तो तुरंत कृष्ण काली बन जाएंगे, कभी ऐसे सब कुछ अद्भुत बातें यहाँ पर होती है। वो जो स्वाद है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का स्वाद है, हम लोग उसकी नकल नहीं कर सकते हैं। तो संक्षेप में मैंने समझाया कि पूर्णमासी ने क्यों मना किया, अगर अभी मना शादी कर देते तो वो सब कुछ जो चटपटा भाव है सब समाप्त हो जाएगा, एवरीथिंग विल बिकम ऑफिशियल। वो दुल्हन बन जाएगी, अपने ससुर के घर जाएगी, वहाँ पर जो भी है लीला होगी प्रेम की, लेकिन जो चटपटी चीज़ें हो रही है वो सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए पूर्णमासी ने कहा कि अभी स्टार्स है ना वो गलत गलत जगह पर बैठे हैं मुहूर्त ठीक नहीं है अभी, द कंस्टेलेशन इज नॉट फेवरेबल। इसलिए उन्होंने वो विवाह को टाल दिया ताकि परकीय भाव जो यहाँ का बना रहे, और फिर आगे योग्य समय पर जो होना है हो। तो गोपियों बहुत नाराज हो गए सब लोग, अरे इतना अच्छा अनुकूलता निर्माण हो गई थी, अभी ऐसे अपने आप ही बन गई थी, वो स्वतः ही बन गई थी हृदय से। उसका लाभ लेते तो सबका विवाह हो जाता, सबका भी इच्छा थी कि कृष्ण के साथ विवाह करें, तो सब कैंसिल हो गया, तो सब दुखी हो गए। तो उसमें से ना ये दुखी होकर कार्तिक पूर्णिमा के बाद सारी गोपियां यमुना जी किनारे गई, उन्होंने 1 महीने तक व्रत किया। उसको कहते हैं कात्यायनी व्रत। कात्यायनी देवी बहुत, वो भी एक दुर्गा देवी का स्वरूप है, और वालू का सैंड से उनकी मूर्ति बनाई जाती है रोज, और वो मूर्ति को अलग अलग आरती पूजा और हविष्य यानी बिना नमक का, बिना स्पाइस का, चावल और उड़द दाल का एक पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं हविष्य। वो हविष्य को अर्पण करते हैं, वो हविष्य केवल खाते हैं, बहुत तपस्या वाला काम है वो हविष्य खाना। इस एब्सोल्युटली टेस्टलेस आइटम, ना सॉल्ट है ना कुछ, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। हम लोग अपने यज्ञ में कभी बनाते हैं उसको किसी विधि के लिए, बट इट इज़ वेरी टेस्टी, वेन आई टेस्ट इट्स वेरी वेरी टेस्टी, बट क्या कहें उसको, तपस्या मानते हैं उसको, वो ऐसा ही खाना उसको। जब भी मैंने विधि किया किसी का और वो प्रसाद मैंने खाया तो इतना सो टेस्टी एक्चुअली, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ ऑफरिंग टू गॉड मे बी, बट हविष्य खाना वैसे उसमें कोई मसाला नहीं, मिठाई कुछ नहीं उसमें। तो वो खाकर पूरा दिन उपवास करते हुए, दिन भर जप करते हुए, यमुना जी के ठंडे ठंडे होने वाले, अभी कार्तिक के बाद ठंडी बढ़ती है ना, शुरू होती है बाद में बढ़ जाती है, तो रोज अभी आज ठंडी है, कल ठंडी, परसों बढ़ती 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 हुई ठंडी में रोज जमीन पानी के अंदर इतना तक डुबा के अपने आप को जप करते रहना, और दिन में एक बार हविष्य प्राण करना, ऐसे 1 महीना उन्होंने व्रत किया उसको, कृष्ण को पति प्राप्त करने के लिए, राधा रानी भी और सभी गोपियां। और फिर उस फल के, उस व्रत के फल देने के लिए उस 30 दिन के बाद में, मतलब कार्तिक और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, श्री कृष्ण भगवान वहां पर, बहुत चतुर है भगवान, उस दिन ना केवल टॉडलर्स फ्रेंड्स को लेके आए वो, समझ में आया आपको, वो खुद बड़े थे, कुछ 5-7 साल के होंगे शायद उस समय, 5 के आसपास होंगे, लेकिन जो साथ में लेके गए ना वो टॉडलर थे। टॉडलर्स को क्या समझ में आया क्या चल रहा है, जो करना था वो समझ में नहीं आने आना चाहिए, ऐसे बच्चों को लेके गए वो उधर, जो रेंग रहे ऐसे घुटनों चल रहे हैं, ऐसे बचपन छोटी छोटी गेम खेल रहे हैं, और यही एक थोड़े से बड़े थे वो गए। और उन्होंने क्या किया, जब लास्ट दिन उनका व्रत पूरा होना, तो नदी में स्नान करने जब गई अपने वस्त्र उतार कर, तो सारे वस्त्र चोरी कर लिए, और फिर वो जो बाहर आए देखे, अरे वस्त्र सब गायब, वस्त्र सब ऊपर है, तो वो वस्त्र हरण लीला भगवान ने वहां पर की, मतलब एक तरह से उन्होंने अपने सारी गोपियों को एक पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जो भी उन्होंने किया वो समझना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, वो बहुत गहन विषय है। एनीवेज, तो वस्त्र लीला करने के बाद में, वस्त्र हरण की लीला करने के बाद में उन्होंने 5वें दिन, उसके बाद 5वें दिन सारे गोपियों को रास में बुलाया है और रास में प्रवेश दिया है, और रास में प्रवेश देकर भी एक पत्नी का स्थान दिया उनको। रास लीला भी बहुत अद्भुत लीला है, वो समझना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए जब मन में बहुत सारी काम वासना है, दुनिया की आसना है, तो रास लीला नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे बताया, क्योंकि उसमें वो पढ़ेंगे तो और आओ क्या आपको अग्नि भड़केगा जो सुनकर समझा, आप अब एकदम बहुत कामुक हो गए हो, किसी फिल्म स्टोरी में देख रहे हो, कुछ रोमांस चल रहा है तो आप देख के ही पागल हो जाओगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी मन में आपकी अग्नि है उधर, उसमें घी घी पड़ रहा है, तो फिर और। इसलिए साधुओं के संग में साधना करते हुए शुद्ध मन से अगर आप सुनेंगे तो वो काम मर्दन लीला कहा गया है। अगर साधुओं के संग में शुद्ध हृदय से, अगर श्रद्धा से, अगर रास लीला का वर्णन सुनेंगे तो काम मर्दन कर देगी वो, अपने मन के काम को नष्ट कर देगी। तो ये इसको आगे का पार्ट है जो मैंने कल नहीं बताया था। तो ये सारी जो चीजें हैं चटपटी, वो समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनका विवाह जो है रद्द किया गया, और गोपियां फिर इंतजार करती रही। उसके बाद भगवान को पता था कि इन सबको मेरे साथ विवाह करना है, तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्म सम्मोहन लीला का आयोजन किया, अगासुर का वध किया। अगासुर जानते ना, पाइथॉन, उसने अष्टावक्र मुनि का अपराध किया था देवता के रूप में, तो अष्टावक्र मुनि ने उसको शाप दे दिया, तुम बहुत घमंड करते हो, जाओ सांप बन जाओ। अष्टावक्र मुनि के शरीर में 8 वक्र थे, 8 बेंड्स, तो वो देखकर वो हंसा, ये वॉकिंग लगा ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस की तरह वो चलते थे, वो ऋषि बहुत महान ऋषि है वो अष्टावक्र ऋषि, उसको देखकर हंसने लगा, ये क्या है, इट्स लाइक अ सी क्रिएचर। तो उन्होंने शाप दे दिया, कम जाओ सांप बन जाओ, तो वो पाइथन अजागर बन गया वो, और इतना भयंकर बन गया वो राक्षस बनने के बाद में कि देवता लोगों को उसने थर्रार करके रखा था, ब्रह्मा लोक तक लोग कांपते थे उसके नाम सुनकर। एक दिन खबर आई कि अगासुर को मार दिया गया। किसने? एक छोटे से बालक ने जो वृंदावन में रहता है। तो ब्रह्मा को जब खबर मिली तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है, वी आर ऑल्सो स्केर्ड ऑफ अगासुर, और ये बालक कैसे उसको आसानी से मार सकता है। और एक खबर आई देवताओं की तरफ से, वो भगवान है, वो अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। अरे और भी आश्चर्य हुआ। तो परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा नीचे आए और उनको और आधा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिसको भगवान समझने के लिए देखने के लिए आए थे वो इसके मुंह की लड्डू खा रहे, उसके मुंह की लस्सी पी रहे, उसके मुंह से कर रहे, सब ऐसा चल रहा है। बोले ये भगवान नहीं हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, हम लोग इतना मंत्र मंत्र बोल के उनको भोग लगाते हैं। तो उन्होंने फिर उनको और परेशान करने के लिए बछड़ों छीन लिए, फिर बालकों को छीन लिया, सब हो गया। फिर भगवान ने तुरंत अपने आप को सारे बालकों के रूप में और सारे बछड़ों के रूप में रूपांतरित कर दिया। ही बिकेम ऑल द कावर्ड बॉयज एंड ऑल द काव्स, स्वयं बने वो जैसे हुबेहुब एकदम सेम। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, तो उसी से वो ऐसे ही घर चले गए सब लोग। तो कृष्ण को चिंता थी कि अरे अगर सारे माँ के सारे बच्चों को लेकर मैं आया हूँ और मैं अकेला लौट के गया, उस दिन बलराम जी का बर्थडे था इसलिए बलराम जी उधर बर्थडे मनाने के लिए रुके थे। मैया ने क्या कहा, आज आपका जन्मदिन है, आज आपको दान देना है। पश्चिम संस्कृति में क्या होता है बर्थडे के दिन, लेना लेना और लेना, आप क्या देंगे आप क्या देंगे आप क्या देंगे। वैदिक संस्कृति में क्या होता है, बर्थडे के दिन बैठकर पूजा वूजा करने के बाद में एक जगह बैठकर सभी लोगों को दान देना है। जितने भी लोग आएंगे, ब्राह्मण जितने भी साधु आएंगे, जितने भी छोटे मोटे आएंगे, सब लोगों को गिफ्ट देना है और आशीर्वाद मांगना है उनसे, जो स्वतः आएगा हृदय से। जब आप कुछ देंगे तो प्रेम से आशीर्वाद आएगा। जैसे आपने उसको वो बेडशीट दिया तो कैसे भर भर के आशीर्वाद दिया, तुरंत देते ही तुरंत आशीर्वाद आ जाता है। तो आशीर्वाद लेने के लिए बर्थडे मनाया जाता है और आशीर्वाद मिलना चाहिए, इसलिए लोगों को भेंट देते हैं हम लोग, उनको भोजन खिलाते हैं, भेंट देते हैं, लड्डू खिलाते हैं, तो प्रेम से वो आशीर्वाद देते हैं। इसलिए बलराम जी रुके हुए थे, बलराम जी नहीं थे, कृष्ण अकेले गए थे। अभी सबके सब बालकों को लेकर अकेले लौट के, तो क्या ले, हमारे बालक है, हमारे बालक है, हमारे बालक, वेयर इज माय चाइल्ड, वेयर इज माय चाइल्ड। तो उन्होंने अपने आप को सब ग्वाल बालों में रूपांतरित कर दिया एकदम हुबेहू, और वैसे ही घर चले गए जैसे रोज जाते हैं। और सबके घर में सभी गायों की इच्छा थी कि जैसे हमारे वत्स हैं वैसे कृष्ण हमारे वत्स बन जाए, हमारा दूध पी लें। जितनी भी गोपियां थी उनको इच्छा थी कि ये हमारा स्तनपान करें, हमारा बालक बने। और जितनी भी गोपियां थी उनको लग रहा था कि वो हमारे पति बने। सबको इच्छा थी कि कृष्ण हमारे बने, ईर्ष्या से नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ एनवी, ट्रूली फ्रॉम हार्ट। तो फिर क्या हुआ, ये सबके घर में बछड़े बनकर गए तो सबकी गायों ने उन पर प्रेम किया, एक बालकों की तरह अपने बछड़े से भी अधिक प्रेम किया उन्होंने। और सभी गोपियों के स्तनपान किया तो पुत्र भी सबके गोपियों के बने। और बचिया छोटी बचे कौन, अभी यंग गोपीज। तो कृष्ण भगवान ने एक दिन कहा, बाबा बड़ा अच्छा मौसम है, क्यों ना सब गोपियों का सब गोपियों से विवाह किया जाए। तो इस समय कोई किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि पूर्णमासी जानती है कि ये सब भगवान की लीला है। अभी सभी वो खुद बने हुए हैं और ऐसे बने हुए हैं कि है भी और नहीं भी है ना। विवाह करेंगे तो मधुमंगल का विवाह हो रहा है, मेरा किधर विवाह हो रहा है, विवाह करें सीतामा का विवाह हो रहा है, अर्जुन का हो रहा है, उज्ज्वल का हो रहा है, सुबल का हो रहा है, मेरा कहाँ हो रहा है, मैं तो देखने जा रहा हूँ। लेकिन सभी वही बने हुए हैं। तो सभी गोपियों का सभी गोपों के साथ विवाह हुआ और सभी गोपियों गोपियाँ जो है अपने अपने ससुराल चले गई, और जहाँ पर कृष्ण ही स्वयं उनके पति थे। एक साल तक जब ये ब्रह्मा जी चुरा कर बैठे हैं, एक साल तक वो सब वही बैठे रहे। एक साल के बाद नहीं, उसके एक क्षण के बाद जब लौट के आए तो सारे विवाह संपन्न हो चुके थे। यहाँ पर बड़ी अद्भुत बात कही गई है। ब्रह्मा जी को लगा अभी कितना मजा आएगा, देखो अभी सब हाहाकार मच जाएगा ब्रज में, क्यों सब बच्चे गायब है ना, अभी कितने दुखी होंगे वो, छाती पीटते होंगे, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो वो तो देखने आया था, अरे देखते हैं क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है, डोलियां उठ रही है, वाद्य बज रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं, डांस कर रहे हैं सब लोग, ऐश कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अरे क्या चल क्या रहा है, हाउ दिस इज पॉसिबल, सब बच्चे तो मैं ले गया था, उनके सब बछड़े ले गया। तो गायें रोती होंगी, माएँ रोती होंगी, लेकिन सब लोग खुश है, इतने खुश है कि क्या बताएं, जितने पहले नहीं थे। मतलब अपने बच्चों पर वो प्रेम करते थे लेकिन अपने बच्चों से कई करोड़ों गुना अधिक प्रेम कृष्ण पर करते थे वो। अभी उनको पता नहीं है कि इतना कृष्ण जैसा प्रेम उनको क्यों लग रहा है अपने बच्चों के ऊपर, ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा है। दे आर सो सरप्राइज बट दे आर सो लविंग लाइक एनीथिंग। बछड़े को लेकर कृष्ण बीच में एक बार गाय चरा रहे थे गोवर्धन के आसपास, और बड़े ग्वाल बाल बड़ी गायों को लेकर गोवर्धन के ऊपर चरा रहे थे उनको, और कृष्ण यहाँ पे नीचे चरा रहे हैं। तो बड़ी गाय जो है वो अपने वत्सों को देखती है ना तो ऐसे भागती है, वहां से ऐसे भागती है डाउन हिल, कोई पैर सटक गया तो पूरा टंबल डाउन हो जाएगा पूरा। तो एक नहीं लाखों गाय भाग रही है ऐसे नीचे अपने बछड़ों को देखकर। तो बलराम जी देख रहे हैं ऐसा कभी प्रेम गायों को देखा नहीं था अपने बछड़ों को, दी ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तब जाकर कृष्ण ने बलराम के कान में बताया कि ये सब मैं ही हूं। कैसे हुआ ये सब? ये वो दिन तुम्हारा बर्थडे था ना, लास्ट बर्थडे, तभी तुम नहीं थे इधर, यू आर नॉट देयर। उस दिन सब कुछ ये हो गया, इसलिए तुमने मिस किया उसको, ये रहस्य। तब समझ में आया कि इतना प्रेम अपने बच्चों के प्रति कि जो गोवर्धन के चोटी से भाग रहे नीचे चाटने के लिए उनको, दूध पिलाने के लिए, और वो ग्वाल बाल जो उनको देखभाल कर रहे वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो भाग नहीं पाए उतना स्पीड में, इतने भाग रहे नीचे अपने बच्चों की तरफ, इतना दुलार रहे प्रेम रहे। तब ये केवल बलराम के लिए रहस्य खुल गया। ये फिर कृष्ण ने कहा बोलना नहीं किसी को, शांत रखना, सब मैं हूं, ऐसा है। तो ये सब बात कहां से निकली? वो स्टोरी कंप्लीट करने के लिए बताया मैंने आपको सब। फिर जब वो एक क्षण के बाद देखा उन्होंने सब कुछ ये, तो वो बालकों को लेकर आए, तो बालकों को लेकर आए तो ये सब अदृश्य हो गए और बालक फिर चले गए अपने ओरिजिनल वंश। इसलिए भागवत में अगासुर को मारने के बाद में, अभी हम कल नंद बैठक गए थे ना, नंद बैठक में क्या होता है, आते ही आज क्या हुआ उसकी खबर मिलती है, क्या हुआ आज, कृष्ण ने क्या किया, किसने किया, ये क्या, वहां से वहां किया। तो अगासुर के मारने की खबर जो थी, खबर वो एक साल के बाद डिस्कस की गई, क्योंकि वो तो आज ही लौट के आ रहे हैं, उनके लिए तो पता ही नहीं, उनको तो आज गए थे सुबह, अगासुर का वध हुआ था, आज लौट के आए तो पता है आपको, इतने बड़े सांप था, उसका इतना बड़ा मुंह था उसका ऊपर का मुंह बादलों में था, नीचे का जो हाईवे था, हमको लगा नया हाईवे कैसे एक दिन में पैदा हो गया इतना गवर्नमेंट टाइम लेते हैं बनाने के लिए, तो अर्जेंट नया एकदम चकाचक हाईवे बन रहा है, चलो जाके देखते हैं। हम लोग अंदर गए, फिर क्या बाप रे, कृष्ण ने मार दिया उसको। तो परीक्षित महाराज सुखदेव को प्रश्न कर रहे हैं, अरे एक साल के पहले के बाद, मारने के बाद एक साल के बाद चर्चा क्यों हो रही है? तो फ्लैशबैक में सुखदेव जी ने ये कहानी बताई कि ब्रह्मा आए, वो बछड़े चुरा लिए, उनको ले गए, फिर एक साल तक यहाँ पर लीला होती रही, फिर ये ऐसा हुआ। भागवत में भी फ्लैशबैक होता है, हाँ बहुत सारे फ्लैशबैक हैं ऐसे, वैसे ऑर्डर में नहीं है वो। आपने कुछ प्रश्न पूछ लिया, जैसे मैं कैसे अभी बताने के लिए आया कुछ और कह कुछ और ही रहा हूँ ऐसे भी होता है ना कुछ, मैं अभी नोटबुक पकड़ के कब से खड़ा हूँ लेकिन आपको लगेगा कि नोटबुक में क्या लिखा है, इतना कैसे बोल रहे लेकिन नोटबुक का बोल ही नहीं रहा हूँ मैं, और ही कुछ बोल रहा हूँ। वैसे भागवत में भी होता है, जैसे वक्ता बोल रहा है, श्रोता ने कुछ प्रश्न पूछ लिया, उसके उत्तर में फिर ये फ्लैशबैक वो फ्लैशबैक, ऐसे होता है वो। तो इस तरह से भगवान ने, वो थोड़ा स्वकीय परकीय पर मैं चर्चा कर रहा था कि ऐसे ये ब्रज का भाव है, यहाँ पर अधिक आनंद परकीय में है, इसलिए भगवान वो परकीय भाव को और बढ़ाने के लिए यहाँ से मथुरा चले गए। भगवान दुष्ट नहीं थे, क्रूर नहीं थे, वो दिल तोड़ने वाले, वो गोपियों को साथ में मिलने वाला आनंद जो था वो परिपूर्ण हो गया, तो फिर वो उधर चले गए ताकि भाव रूप का आनंद उनको मिले, उत्कट आनंद। इसलिए वो उद्धव जी भी हैरान हो गए कि जो मेरे पास है वो, जो इनके पास है मेरे पास नहीं है, मैं इतना पास रहते हुए। तो ये परक या भाव को और उत्कट करने के लिए भगवान चले गए यहाँ से, और ब्रज में सर्वोत्कृष्ट भाव जो है प्रकट हो गया। तो इस ब्रज की रज की भूमि है, ये भावना ऐसी है। तो ये संकेत जगह, यहाँ पर वो परकीय भाव की लीला है सब। तो आपको मैंने कल बताया था ना सांझी लीला के बारे में, कब होती है वो सांझी लीला, याद है ना आपको? गणपति विसर्जन करने के बाद में, याद रखना, अभी जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा के आगे अमावस्या तक, सर्वपित्री अमावस्या तक पितृपक्ष मनाते हैं हम लोग, और उसमें सभी पुरखों के श्रद्धा श्राद्ध करते हैं उसमें, उसी समय ब्रज में सांझी उत्सव होता है, और दूर दूर के जाकर फूल बिनते हैं सखियाँ, और सांझी लीला के अंतर्गत कुसुम सरोवर की लीला भी हो गई है, जो कुसुम सरोवर में होती लीला वो सांझी लीला के समय ही हुई थी। और फिर सांझी लीला के लिए उसी पीरियड में फूल बिनने के लिए जब राधा रानी यहाँ पर आई, इस वन में, तो यशोदा देवी भी यहां पर आई थी उस समय। और पहली मुलाकात यशोदा की कब हुई थी राधा रानी से? सब लोग सुन रहे हैं ना, पहले से सबसे पहले मुलाकात कभी हुई? हाँ, एट बर्थ, श्योर ना? ओ, एट बर्थ ही हुई थी। जन्म हुआ था तो संकोच हुआ था, नारद मुनि आए थे, बताया था कि संकोच क्यों करते हो, बड़ा उत्सव बनाओ, आई फील सॉरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संत के वचन में कितनी शक्ति होती है, जो दुखदायी स्थिति है, करुणामय परेशानी की स्थिति है, वो संत के एक वचन से एकदम आनंद में बदल गई। कृष्ण, राधा रानी आंखें खोली, उस समय यशोदा देवी पहली बार राधा रानी को मिलने आई थी, उसके बाद कहते हैं इस बार मिलने आई। तो राधा रानी को यशोदा जब मिलती है तो वो कहते हैं कि अरे आज संकेत देवी का व्रत करने में आई थी, राधे राधे, अभी 12 नहीं बजे हैं, अभी 9 ही बज रहे हैं। हाँ, तो हरे कृष्णा, मुझे उम्मीद थी कि आज सुबह के समय पर ये बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन दिन हो या रात, इंदिरा देवी तो हमारे ऊपर छाई रहती है हमेशा, जब भी आओ, कलयुग में सब जगह छाई रहती है। एनीवेज, तो वो कहती है कि संकेत देवी की पूजा व्रत करने के पहले ही संकेत देवी ने मुझे आज उसका फल दे दिया, जो आपका दर्शन हो गया। इतना अपने आप को धन्य मान रहे, देखो यशोदा देवी का भाव क्या है, इतनी बुजुर्ग गोपी है वो, वही छोटी सी कन्या है, लेकिन इसका दर्शन प्राप्त करके यशोदा देवी अपने आप को धन्य मान रही है। मैं देवी का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि उसने आप पूजा करने के पहले मुझको फल दे दिया, आज का दिन पवित्र, सांझे व्रत पवित्र, सांझे लीला पवित्र हो गई, सब ऐसे बोल रही है वो। और उसने बड़े ही प्रेम से राधा रानी को ना गले लगाया, बहुत हृदय से गले लगाया। और फिर उसने ना एक ऐसे सांकेतिक भाषा में कहा कि अपनी माता से कहना कि जो तुमने यमुना किनारे मुझे वादा किया था एक दिन, उसे नहीं भूलना। अभी आप पूछेंगे ना वो क्या वादा किया था, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? हाँ पूछो ना फिर। हाँ पूछो, अभी फिर आपको फ्लैशबैक बताता हूँ, अभी आ गया ना फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक ये है कि एक सुंदर समय था जिसमें यशोदा देवी और कीर्ति देवी दोनों गर्भवती थी एक साथ में, दो सहेलियाँ, एकदम सच्ची सहेलियाँ, हृदय हार्दिक सहेलियाँ, फ्रेंड्स एट हार्ट। तो वो दोनों एक बार रावल और गोकुल, दोनों जमुना किनारे ही है, तो वो जमुना के रित में से टहल रहे थे तो मिले एक दूसरे को, और दोनों गर्भवती थी, तो उन्होंने क्या कहा होगा एक दूसरे को, यानी गैस? कीर्ति ने कहा मुझे बेटी होगी तो तेरे बेटे के लिए मैं ब्याह दूंगी उसको, और उन्होंने ये वादा किया था कि अगर आपको कन्या होगी, आप पुत्र होगा, तो हम उनका विवाह कर देंगे। तो ये अभी बेटे को कैसे बताएंगे, तो खाली इतना ही बता रही है मैया को याद करना कि जो जमुना किनारे वादा किया था ना, तो मैया वो आके वो अपनी मैया को बोल रही है ये सब हुआ, अगर मिलन हुआ, आलिंगन दिया, प्रेम किया, फिर वो चली गई। वो कहती कि मुझे आज मेरा बड़ा भाग्य था, मैं जब सांझी लीला, सांझी का फूल बिनने के लिए संकेत वन गई थी संकेत देवी की पूजा करने के लिए, तो वहाँ मुझे यशोदा देवी का दर्शन हुआ, यशोदा मई का दर्शन हुआ, और उन्होंने आपको एक मैसेज भेजा है कि जो वादा किया था वो याद रखना। तो वादा याद करके कीर्ति देवी की इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, तो राधा रानी को गले लगाया। तो ये सब यहाँ पर हुआ संकेत वन में। उसके बाद में कृष्ण भी यहाँ पर राधा रानी को मिलते हैं ना, तो जो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग आचार्य हैं, तो एक आचार्य हैं चाचा वृंदावन दास, वो हरिवंश संप्रदाय के हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर पहला मुलाकात हुआ था कृष्ण भगवान का। हमने कल जो कहा था वो अलग शास्त्र से कहा था, अलग पुराण के, जहाँ पर प्रेम वन में उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन वो लोग कहते हैं कि प्रेम वन और संकेत वन ये ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों कहानियाँ सच हैं, बोथ आर ट्रू। ओके, तो कहानी ऐसी है कि कृष्ण भगवान ऐसे, पता है उनको कि बरसाने में कोई सुंदर कन्या है, बहुत ही रूपवान, रूप गर्वीली, तो मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तो उसे ढूंढ ढूंढ के इधर आए थे, तो इधर राधा रानी भी आई थी, तो जब उनका दर्शन हुआ ना, तो कृष्ण एकदम भाव विभोर हो गए उनको देखकर। सब सखाओं को लेकर आए थे वो यहाँ पर, इतने भाव विभोर हो गए कि अच्छा, वो मैंने आपको उसका पार्ट कल बता दिया था कि उन्होंने ना सब कृष्ण भगवान ने चुरा चुरा कर मिठाइयाँ अपने फ्रेंड्स को खिलाई थी, और कहा था कि फ्री में नहीं खिला रहा हूँ आपको, आपको अभी पिताजी से सिफारिश करनी है कि हमको बड़ी गायों का जिम्मेदारी दे दो, कितने दिन आप छोटी छोटी गायों को देते रहेंगे। क्योंकि ना सब बच्चों ने एक दिन कृष्ण भगवान को इतना खिजाया, इतना खिजाया, इतना खिजाया ना, तो परेशान हो गए हो, क्या बोल रहे हैं, तुम तो ना छोटे ही हो, तुम पर तुम्हारे बाबा को श्रद्धा ही नहीं है, गाय चाहती है लेकिन बाबा को श्रद्धा नहीं कि तुम गायों को चरा पाओगे, तुम्हारे कैपेसिटी पर डाउट है उनको। इतना अभी समझ, आपने बोला ठीक है, इन्होंने भी बोला, इन्होंने बोला, सब लोग बोल रहे तो एकदम डिप्रेस ना, एक आदमी ने बोला तो एकदम डाइजेस्ट, बट उसके बाद में बहुत डिप्रेस हो जाते हो, तो उस दिन बहुत दुखी थे वो, और सीधे जाके लेट गए ऐसा उल्टा मुंह करके गद्दी में, कुछ स्नान नहीं, मिठाई नहीं, लोरी नहीं, कुछ नहीं, उस दिन स्ट्रेट जैसे ऐसे आए ना, तो कैसे आके पहले माँ के गोद में बैठते हैं, यहाँ बता रहे, वो बता रहे, क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, उस दिन कुछ नहीं, स्ट्रेट उनको पार करते हुए, बिना ऐसे से देखा ही नहीं आपको, ऐसे मैया बाबा को पार करते सीधे गए ऊपर बिस्तर पे, गए उल्टा सो गए और उठने का नाम नहीं, सब परेशान, क्या हो गया। अच्छा उसी दिन जब ये गाय चराने गए थे उधर, वहाँ पर वो उनका सब मजाक कर रहे थे, हास परियास कर रहे थे, उनको बोल रहे तुम्हारे श्रद्धा नहीं है बाबा को वगैरह वगैरह, उसी दिन यहाँ पर घर में डिस्कशन हो रहा है कि अभी तो लाला को बड़ी गाय को जिम्मेदारी देना चाहिए, पंडित को बुलाते हैं, गर्ग मुनि को, शांडिल्य जी को बोलते हैं, तो कल का ही मुहूर्त है ये, बेस्ट है कार्तिक वद्य, कार्तिक शुद्ध अष्टमी का, तो वो तैयारी करके उनको वो न्यूज़ डिक्लेयर करने वाले थे शाम को आने के बाद, इसमें आएगा तो बोल देंगे कल तुम्हारा ये, लेकिन वो ऐसा उन्होंने लटका के चला गया, उनको मौका ही नहीं दिया गया, अभी सब तैयारी हो चुकी है, गायों को भी बता दिया गया है कि आपको जाना है, तो गाय सज धज के रेडी है, 108 झुंड रेडी है, और वो रोज सुबह उठते ना बिस्तर से उठते ही पहले क्या करते हैं, मुरली बजाते हैं, सबको सिग्नल देते हैं, उठो जाने का समय हो गया है, तो सब लोग वो मुरली सुनकर उठते हैं, वो मॉर्निंग अलार्म है उनका, वो सुन के उठते हैं, तैयार होके भाग के आते हैं। इस दिन तो मुरली भी नहीं बजी तो ग्वालबाल अपने आप उठ गए, जैसे मेरा कैसा होता है, मैं 4:30 का अलार्म लगाता हूँ लेकिन 4 से ही जग जग जाता हूँ मैं, खाली वेट करता हूँ कभी अलार्म बजेगा, अलार्म बजेगा, अलार्म बजते ही उठ जाता हूँ, आज भी ऐसे ही हुआ, तो वो भी ऐसे वेट कर रहे हैं अभी मुरली बजेगी, तो उठ के भागना है, तो मुरली नहीं बजी तो फिर अपने आप उठ गए वो, तैयार होके आ गए वो, उनको खबर मिल गई थी अदर सर्किट से, लेकिन इनके गुस्से की वजह से उनको खबर नहीं मिल सकी, सब लोग तैयार आ गए, गाय तैयार हो गए, सब लोग पंडित आ गए, मंत्र सबकी व्यवस्था हो गई है, लेकिन अभी तक ये बिस्तर पे उल्टा सोए हैं, उधर से आके मैया बुला रही है, तो इधर से सुनाने का सो गया होगा, इधर से आके गा रही है तो भी सुन नहीं रहा है, क्या कारण है उसका, सोते हुए व्यक्ति को जगाना आसान होता है, तो सोने का बहाना करता है उसको आप नहीं उठा सकते, तो ही इज नॉट वेकिंग अप। फिर बाबा कहते हैं अरे बोल दो उसको, बड़ी गाय को जिम्मेदारी देने वाले हैं आज, आज अष्टमी का दिन है, चलो उठो, जैसे ही बोला ना स्प्रिंग की तरह उठ के खड़ा हो गया, और आज एक्सप्रेस स्नान किया खटाखट एकदम, कोई बीच में कुछ धीरे धीरे करने का काम ही नहीं, तुरंत तैयार होके आ गया। तो वो दिन के लिए इन्होंने पहले से फील्डिंग भरी थी, इनको जाके सब लोग ने अपने अपने बाबा को बताया कि ऐसा होना चाहिए, फिर सब बाबाओं ने 84 खंभा पे मीटिंग किया कि देना चाहिए, फिर उसके बाद में ये तय हुआ सब कुछ। मुझे ना एक कथा बहुत दिन से याद आ रही थी आपको बताने के लिए, अभी याद आ गई मुझे, वो फ्लैशबैक में नहीं है, वो अलग कथा है। वो कथा ये है कि एक दिन ना ये ग्वालबाल सब खेल रहे थे, और कृष्ण जो है ना वो किसी गेम में जीत गए, उनकी पार्टी जीत गई और बलराम वाली पार्टी हार गई। तो अभी देखा मालूम है ना आपको, जब कोई बच्चे हारते हैं ना तो उनको बड़ा दुख होता है, तो फिर वो जीतने वाले पार्टी को ताने मारते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसा, हाँ तुम्हारा तो क्या, तुम्हारा ये बॉल था ना, फिर क्या ऐसे। क्या अभी तुम्हारी पार्टी है सब, तुम्हारा अभी कैसे, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सब चालू हो गया। तो उन्होंने क्या किया ना, बलराम वाली पार्टी ने और बाकी सब भी मिल गए बाद में उसमें, पहले तो बलराम वाली पार्टी थी, क्या बोले ऐसा है मैया गोरी, बाबा भी गोरी और तू कैसा काला। अब ये तो बहुत गहन विषय है ना भाभी, इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। तो कृष्ण कहते चौंक गया हो, मैंने सोचा नहीं इसके बारे में कभी। अभी उसी बात पर सबने जोर देना शुरू किया, बोलते हैं कि तुम नंद बाबा यशोदा माई के बेटे ही नहीं हो। तो कृष्ण को आश्चर्य हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना प्रेम करते मुझसे वो। नहीं वो ऐसा है, अभी अभी लोग चालू हो गए, अभी बोला अच्छा वातावरण है, सब चालू हो गए। क्या बोले, हमने सुना था कि मैया बाबा के बाजार गए थे, सुन लो अच्छी तरह से, मैया बाबा बाजार गए थे, बाजार से लौट रहे थे, तो उस समय उस जमाने में ना बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, बहुत बड़े पेड़, उसके अंदर ना बिग होल भी हुआ करते थे, एज इफ देयर इज अ बिग ड्रॉइंग रूम, यू कैन स्टे इनसाइड, और साधु लोग पूजा भी तपस्या भी करते थे उसका। ऐसे बहुत सारे पेड़ मैंने भी देखे ब्रज में 30 साल के पहले। तो ऐसे पेड़ के बीच बीच में बहुत जगह थी, उसमें ना एक काला कलूटा बालक बहुत जोर जोर से रो रहा था, बुखार प्यासा था, माता पिता का ठिकाना नहीं था। तो ये लोग ने उनको देखा, तो आगे चले गए, फिर पीछे आ गए, फिर आगे चले गए, फिर पीछे आ गए, सोच रहे क्या करें, इतना बालक रो रहा है। बड़ी दया आ गई उस पर, तो उसने उस बालक को उठाया और घर पे लेके आए। अरे वही तो तुम बालक हो, ही इज द सेम चाइल्ड, यू आर द सेम चाइल्ड, उनके बच्चे नहीं हो, तो दया आ गई उनको आपके ऊपर, आपको वो पेड़ में डाल के चले गए थे कोई, तो वो उठाए हो बालक तुम हो। अभी कृष्ण जो फूट फूट कर रोने लगे ना, बाप रे, यू आर लाइक नो नो। लेकिन सब लोग बोल रहे नहीं, हमने सुना है ये सच है कि तुम माता पिता के पुत्र नहीं हो, तुम बाहर से आए हो, तुमको उठा के लाया गया है। तो ये और पहले पहले ना पहले क्या हुआ, देखो ये बहुत शरारती बच्चे होते हैं, एक्चुअली थोड़ा मैं भूल गया आपको बताने के लिए, जब वो हार गए ना तभी कैसा मानना, अभी समझो आपको समझो आपको खिंचाना है मुझे, तो हम लोग ना ऐसे कान में खुसूस करेंगे और आपको देखेंगे हंसने लगेंगे, हाँ फिर सब लोग हंसने लगेंगे, और सब लोग क्या है एक स्टाइल है उनका, आपको देखेंगे हंसने लगेंगे, आप वहाँ बढ़ेंगे कोई आपको देखेंगे हंसने लगेंगे, तो आपको लगेगा क्या बात है भाई क्यों हंस रहे हो। तो लोग क्या बोलते हैं उनमें, वी जस्ट कांट टेल यू, इट्स टू फनी, वी कांट टेल यू। तो आपकी उत्सुकता और बढ़ती है, बताओ ना, नहीं नहीं वो बहुत मजेदार बात है, वो नहीं बता सकते, इट्स टू फनी टू टेल यू। तो फिर वो बार 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 कृष्ण ने पूछा उसको देख के हंसने के बाद में, तो फिर उन्होंने मुंह खोला कि तुम ना यशोदा के बालक नहीं हो, तुम उठाए हो बालक हो। अभी इट्स टू फनी बट इट्स टू सैड फॉर हिम, तो वो रोने लगे और एंड तक उसको इतना खिंचाया, चला गया बेचारा दुखी होकर, घर आके मैया के पास में आया, रोते ही जा रहा है। मैया पूछ रही व्हाट हैपेंड, बताओ ना, इट्स टू सैड आई कांट टेल यू। उधर क्या बोल रहे थे, इट्स टू फनी वी कांट टेल यू, इधर बोले इट्स टू सैड, और जितनी बार टू सैड उतनी बार रो रहे हो, इतना दुखी बात है ये कि मैं आपको बोल नहीं सकता। तो मैया भी और उत्सुक हो गए ना, और उत्सुक हो गए, मतलब बोल तो सही, कल रोते जाएगा कि बोलेगा भी। तो कहते लोग सब कहते कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, इतना रोया, मतलब वो पास में भी नहीं आ रहा है, गोद में भी नहीं जा रहा है, क्योंकि लग रहा है मैं तो उनका पुत्र ही नहीं हूँ, मैं गोद में कैसे जा सकता हूँ, मैं तो किराए का पुत्र हूँ। तो मैया ने बहुत उसको समझाया, बहुत प्रेम से बाबा को बुलाया, क्योंकि बिकम ए बिग प्रॉब्लम ऑफ दैट डे, यू नो इट्स लाइक वेरी यूनिक प्रॉब्लम। तो बाबा ने और आते कहते कि बहुत देर रात तक उसको समझाया, नहीं बेटा तुम हमारे ही पुत्र हो, वो क्या है ना, बलदाऊ जी का जन्म है ना, वो दोपहर को 12 बजे हुआ था, पूरे धूप में हुआ था, तो वो गोरे गोरे, आपका जन्म रात को हुआ था ना, इसलिए आप, लेकिन हुआ आप मेरे ही पुत्र। तभी वो शांत हो गया, मिठाई विठाई खाई, लोड़ी वोड़ी सुनी और सो गया फिर। इट्स टू फनी राइट, आई कांट टेल यू, ये कहां से याद आया मुझे, ठीक है चलो। तो फिर वो देख के ही राधा रानी को भाव विभोर हो गए और डांस करने लगे एकदम पागलों जैसे। तो ग्वाल वाल पूछने लगे क्या हुआ, ये मृदंग पखवाज के बिना क्यों नाच रहे हो आप। तो उधर से मेरे को याद आई बात, वो कहते हैं आई कांट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता ये बात, क्योंकि आप जैसे बताओगे मैं बताऊंगा तो आप बाबा को जाके बताओगे। तो कहते हैं रहने दो, हम सब जानते हैं, हाँ लेकिन तू जिसको देख के पागल रहे हो वो चली गई है ऑलरेडी यहाँ से। तो कृष्ण सुबल को कहते हैं मुझे ले चलो, जहाँ पर वो चली गई मुझे ले चलो, मैं उसके बिना अपने जीवन को ही मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है अभी। तो कृष्ण कहते हैं देखो हमारे गौचारण का आज पहला दिन है, तो एक जगह शास्त्र में लिखा है कि गोपाष्टमी के दिन भगवान गोवर्धन चले गए गायों को लेकर, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि गोपाष्टमी होते ही पहले संकेत बनाए वो। तो कहते हैं कि हमारा संकेत, हमारा जो गौचारण करने का प्रथम दिन है, बोहनी कहते हैं ना उसको, जो फर्स्ट डे है वो सक्सेसफुल हो गया आज, इस सुंदर देवी का दर्शन हो गया। तो सुबल को कहते हैं जाओ सुबल जाओ, उसका नाम पता करो, उसका घर पता करो, उसका क्या माता पिता का नाम पता करो, सब करो। मेरा दिल कहते हैं आहत हो गया है। आहत मतलब समझते हो, बहुत सुंदर हिंदी है ये। इट्स लाइक माई हार्ट इज इंज्योर्ड कम्प्लीटली इन पेन। उसको देख कर मेरा दिल में ऐसे बाण लगा हुआ है। हाँ कैसे कैसे बाण है वो? कह रहे हैं उसके सुंदर मधुर मुस्कान का बाण, उसके कमल जैसे मुख कमल का बाण, उसके सौंदर्य का बाण, उसके शरीर के हर अंग का बाण, सारे बाण हृदय में घुस गए हैं, सारे बाण घुस गए ऐसे बोलते। तो बच्चे भी बहुत होशियार है, बोलते दिखाओ तो सही कहाँ घुसे, इतना तुम करा रहे हो, इतना सब क्या कहते हैं उसको, कैसे कहते हैं उसको, उड़ा का विवर तो इस तू, वाई आर सो मच सॉबिंग, लेट मी सी वेयर द एरोज आर हिट। तो कहते तुम कितने दुष्ट हो, इतनी दुष्ट से बात कैसे करते हो, इतनी कठोर बात कैसे कर सकते हो आप, ये कठोर बात करने के बदले में जाओ किसी देवता को ढूंढो जिसकी पूजा करके हम सब लोग मेरी उसके साथ शादी कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो वो बच्चे कहते हैं कि एक ही रास्ता, एक ही रास्ता है, पावन सरोवर में स्नान करो और गिरिराज की पूजा करो, फिर तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। तो फिर कृष्ण राधे मैया कथा है रही है, शांति रखो। तो उतने में सुबल जी आके बताते हैं, अरे सुना वो कन्या का नाम राधा रानी है, किशोरी ब्रिजभानु पिताजी का नाम है, माता का नाम कीर्तिदा है और बरसाना उसकी राजधानी है। फिर कुछ बालक कह रहे हैं, अच्छा हुआ, ये कौन है पता है आपको, जिनके घर में शादी हो रही ना वो बारात वाले लोग हैं, दर्शन करने आए हैं, कैमरा वाला आया साथ में उसके लिए आया। उतने में फिर बाकी बालक बोलते हैं अच्छा हुआ वो चली गई, क्योंकि नंदगांव के राजकुमार को अगर ऐसे हालत में देखते ना तो क्या नंदगांव की रहती इज्जत, जिस प्रकार से तुम ढोल रहे हो, पागल जैसे व्यवहार कर रहे हो, अच्छा हुआ देखा नहीं, नंदगांव की इज्जत बची रही। हाँ क्या बोलते वो, कि वृषभानु नंदिने के दृग बाण से, मतलब नजरों के बाण से तुम कैसे छलनी हो गए, अगर वो देख लेते तो तुम्हारी क्या इज्जत रहती। तो फिर कहते हैं कि डोंट वरी, तुम्हारी माता पहले से पावन सरोवर में स्नान करके गिरिराज का पूजन कर रही है, नारायण का पूजन कर रही है, संकेत देवी का पूजन कर रही है, तुम्हारा विवाह उसके साथ निश्चित रूप से होगा। इस तरह से चाचा वृंदावन दास ने ये लीला को यहाँ पर वर्णन किया है, राधा रानी का कृष्ण का पहली नजर और कृष्ण की स्थिति हुई। तो संकेत देवी का इधर मंदिर है, थोड़ा आगे जाएंगे दर्शन करेंगे, संकेत वट है, संकेत वट में वो देवी का स्थान है। और हमारा भाग्य यह है कि संकेत वन में रास मंडल भी है और झूला भी है, तो झूला के समय झूला चलता है और रास तो रोज के चरह चलता है। संकेत वन झूलन स्थली है, रास स्थली है, मिलन स्थली है, एकांत मिलन स्थली है। और संकेत वन में हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आकर भजन किया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी गुणमंजरी के अवतार हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी एक ही साउथ इंडियन गोस्वामी हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी छह गोस्वामी सबसे जूनियर गोस्वामी हैं, उम्र में सबसे छोटे हैं। उनके घर में चैतन्य महाप्रभु ने 4 महीने श्रीरंगम में निवास किया था, चतुर्मासी में उनके घर में, और दिन भर चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम के मंदिर में नृत्य करते थे हरिनाम संकीर्तन का, और रात को रात भर बैठ के प्रबोधानंद जी, गोपाल भट्ट जी और गोपाल भट्ट के पिताजी वेंकट भट्ट जी और तिरुमला भट्ट जो तीसरे भाई थे उनके, तिरुमला भट्ट, गोपाल भट्ट, वेंकट भट्ट और एक प्रबोधानंद सरस्वती, वो है ना वृंदावन महिमामृत लिखने वाले, वृंदावन के पागल भक्त, वो सारे बैठकर रात भर चैतन्य महाप्रभु से सुनते थे कथा कृष्ण की। और छोटा बालक 4 महीने रात दिन जाग कर ये कथा सुनता रहा और बहुत आकर्षित हो गया। जब महाप्रभु निकलने लगे तो इनके पीछे पीछे जाने लगा, तो महाप्रभु ने उनको आदेश दिया अभी नहीं आना है आपको, अब माता पिता की सेवा करने, जब वो चले जाएंगे तब आपको वृंदावन में आना है। तो बेचारे ने दिल पर पत्थर रखकर आखिर दम तक माता पिता की सेवा की, जब वो चले गए तो ये वृंदावन चले गए, ये वृंदावन चले गए तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु थे, लेकिन आदेश वृंदावन का था तो जगन्नाथपुर जा नहीं सके, वृंदावन रह के महाप्रभु से विरह में तड़पने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना बैठने का आसन जो है ना वो भेंट में भेज दिया, थोड़ा अग्नि शांत हो गया। मैं तो फास्ट बता रहा हूँ आपको। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको स्वप्न दिया और कहा कि जाओ, मैं समझता हूँ आप मेरे बड़े विरह में हो, मेरी मुलाकात आपकी गंडकी नदी में होगी। कहाँ पर है वो? नेपाल पशुपतिनाथ के पास में। तो वो चल के वृंदावन से पशुपतिनाथ गए नेपाल, वहाँ से गंडकी नदी और आगे है, बहुत दूर है वहाँ से आगे पहाड़ों में काली गंडकी और गौरी गंडकी। तो काली गंडकी में उसने स्नान किया तो वहाँ पर शालिग्राम शिला के रूप में भगवान का दर्शन हुआ। उनको लेकर लौट के आए तो एक दिन नरसिंह भगवान के दिन जन्मदिन के ऊपर कथा किया तो उनके मन में विचार आया कि हमारे ठाकुर की तो अंग ही नहीं है, काश अगर उनके अंग होते तो कितना अच्छा होता। कोई साधु कोई धनी आदमी आके वस्त्र देके चला गया था, मुरली पलेंगा फैरिया सब देके गया था। तो उन्होंने कहा था मुझे मत दो मुझे, क्योंकि मेरे ठाकुर तो गोल मटोल है, मैं कैसे पहनाऊंगा उनको। मैंने आपके लिए आप रखो उसको। तब से उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि इनके भी अंग होते तो कितना अच्छा होता। नरसिंह भगवान की कथा उन्होंने पढ़ाई लोगों को उस पवित्र दिन पर, तो मन में क्या विचार आया, अरे ये ठाकुर बड़े अजीब है, भक्त ने ऐसा इशारा किया तो खंभे से प्रकट हो गए, तो ये पत्थर से क्यों नहीं प्रकट हो सकते। ऐसा एक मन में विचार आया। मन में विचारने में क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, यू कैन थिंक यू आर फ्लाइंग इन द स्काई, राइडिंग ऑन द मून। मन तो मन ही है ना, उसमें क्या है, वो भी चंद्र ही कंट्रोल करता है उसको, मन को। बाय द वे चंद्र से ही मन को नियंत्रित किया जाता है। एनीवेज, तो ये चतुर्दशी के दिन सो गए ये विचार करते हुए कि प्रहलाद के एक इशारे पे तत्क्षण खंभे से प्रकट हो गए, वो भी अद्भुत रूप में, तो ये शिला से क्यों नहीं प्रकट हो सकते। ऐसा सोच के वो शयन करा के शिलाओं को, 12 शिला थी, सो गए। तो वो दामोदर शिला से राजा रमण देव का विग्रह प्रकट हो गया, मतलब ऐसा रुमाल ऐसे हो गया, ऐसा रुमाल था ना फ्लैट, तो वो खड़ा हो गया ऐसे रुमाल। तुरंत जमुना जी में स्नान करके सुबह उठे, उसको रुमाल को हटाया तो शालिग्राम शिला के सामने से बहुत सुंदर राधा रमन जी के विग्रह पैदा हुए थे। वो राधा रमन जी के विग्रह को प्रकट करने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी संकेत वन में आए थे और उन्होंने यहाँ पर भजन किया है, तो उनकी भजन शैली भी इसी संकेत वन में है। उसकी अद्भुत कहानियाँ हैं। वो जब संकेत वन में गुणमंजरी अवतार लेकर आई तो कई गोपियाँ भी आई, उनकी सखियाँ, लेकिन वो स्त्री शरीर में आई और ये पुरुष शरीर में आए, तो सखी के आकर्षण से वो भी आते थे तो गांव के लोग उनको रोकते थे, क्या बावड़ी है ये सब लड़कियाँ, वो जवान कोई साधु आ गए तो लग गए उनके पीछे, तो रोकते थे उनको, कथा में आने देते नहीं थे। तो कहते हैं कुछ कुछ गोपियाँ जो ना वो शरीर छोड़ गई, आत्मरूप में आके मिली उनसे। बहुत सारी गोपियाँ झगड़ा करके ये करके मिलने आती थी। वृंदावन में भी ऐसे ही हुआ, कई सारी उनकी सखियाँ अवतार ले चुकी थी, तो वो भी छुप छुप के आती थी, झगड़ा होता था घर पे, क्योंकि ये गुणमंजरी का अवतार है। तो यहाँ पर संकेत वन में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भजन किया है, आप उनका भी दर्शन करो, उनका भी आशीर्वाद लो। राधा रमन भगवान को प्रकट करने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्री संकेत वन धाम की, गोपाल भट्ट जी महाराज की, संकेत देवी की, संकेत वट की, संकेत वन की, जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच।